الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. گزشتہ کل ہم نے آپ کے سامنے علم کے متعلق بیان کیا تھا اور ہمارا موضوع تھا علم اور عمل، لیکن علم کے بیان میں اتنا ٹائم گزر گیا کہ عمل کا بیان کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج صرف عمل پر گفتگو ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ علم عمل کے بغیر بیکار، اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے علم اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی پہلی حدیث بیان کی ہے، اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے درج کیا، اور بخاری کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. امام بخاری نے بڑی محنت سے، بڑے ذوق سے، شوق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا اور اس کتاب کو مرتب فرمایا. انہوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں جمع فرمائیں، لیکن سب سے پہلے اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں درج کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ आइए पहले हम हदीस शरीफ पढ़ लें, इसके बाद इस पर गुफ्तगु करेंगे। इसके रावी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनके तारुफ की जरूरत नहीं और ना उनकी जात तारुफ की मोहताज है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम आमाल का सवाब नियतों से है, यानी इस सवाब का दारोमदार नियतों पर है। वह इन्नमा लिइम्रिइ मा नवा, हर उस आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। फिर फरमाया, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि। जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पस उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। वमन कानत हिजरतहु इलल दुनिया युसीबुहा, और अगर किसी ने हिजरत की दुनिया के लिए, दुनिया के माल के लिए, और इमराती यतज़व्वजुहा, या किसी औरत से निकाह करने के लिए, फहिजरतहु इला मा हाजर इलैह औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस उसकी हिजरत उसी के लिए। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है और इमाम बुखारी ने इस हदीस को मुतअद्दिद सनदों और मुख्तलिफ लफ्जों के साथ अपनी इस किताब में दूसरे छह मकामात पर भी जिक्र किया। इसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हदीस की अहमियत क्या है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस शरीफ को उन बुनियादी अहादीस में शुमार किया है जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद है, दीन इस्लाम का दारोमदार है। चुनांचे इस हदीस के बारे में अबू दाऊद मुहद्दिस फरमाते हैं कि लाखों अहादीस के खजानों में से दीन पर अमल करने के लिए सिर्फ चार हदीसें काफी हैं और उन चार हदीसों में से एक हदीस ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो आपके सामने पेश की गई। हजरत इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इस हदीस में इल्मे दीन का एक तिहाई हिस्सा मौजूद है, क्योंकि दीन के आमाल तीन किस्म पर हैं, कल्ब के आमाल, जबान के आमाल और बाकी आजा के आमाल। तो क्योंकि इस हदीस में कल्ब के आमाल यानी नियत का जिक्र है, इसलिए इसमें एक तिहाई दीन का हिस्सा मौजूद है। अब आइए देखें कि इसकी वजह क्या हुई। जैसे किसी ना किसी आयत का कोई ना कोई पस मंजर है, कुरान करीम की जितनी आयतें हैं ना, किसी ना किसी मामले में नाजिल हुई है, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस जो हैं वो किसी ना किसी मामले में सरकार ने किसी वाक़े की सूरत में, किसी अहकाम को बताने की सूरत में, किसी गज़बे में, किसी जंग में, या अमन में, या मस्जिद नबवी में, या मक्के में, या मदीने में, कहीं भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया उसके पीछे कोई ना कोई चीज़, कोई हिकमत कार फरमा थी। तो इस हदीस शरीफ के पीछे क्या था? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र सहाबी फरमाते हैं कि एक मुसलमान औरत थी जिसका नाम था कीला, और आम तौर पर लोग उसे उम्मे कैस कहते थे, यानी उसकी कुनियत उम्मे कैस। एक शख्स ने उसे निकाह का पैगाम दिया उम्मे कैस, उसने कहा कि जब तू मक्के से मदीने हिजरत करेगा तब मैं तुझसे निकाह करूंगा, अगर तूने हिजरत नहीं की तो मैं निकाह नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक। उस शख्स ने हिजरत की किस लिए? कि मैं उम्मे कैसे निकाह करूं, उसकी शर्त यही थी ना। अच्छा हिजरत हो गई और ये बात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को पता चल गई कि इस तरह इसने इस औरत को निकाह का पैगाम दिया है, उसने कहा जब तू हिजरत करेगा तब मैं निकाह करूंगी, तो इस वजह से इसने हिजरत की है। तो जब ये बात मशहूर हुई और वो शख्स हिजरत कर चुका तो सहाबा ने उसे महाजरे कैस के नाम से याद किया। ये महाजरे कैस यानी इसने जो हिजरत की है वो उम्मे कैस की वजह से की है, उससे निकाह करने की वजह से की, तो उसको महाजरे कैस करने लगे। और ये महाजरे कैस उसका लकब इतना मशहूर हुआ कि उसका नाम लोग भूल गए, नाम किसी को पता नहीं था। और इमाम कस्तलानी फरमाते हैं मैंने उसका नाम तलाश किया, मुझे उसका नाम कहीं नहीं मिला सिवाय महाजरे कैस के, यानी इसी बात से वो मशहूर हुआ। ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंची कि इस तरह उसने पैगाम दिया, उसने शर्त लगाई जब तू हिजरत करेगा तब मैं निकाह करूंगी, फिर उसने हिजरत की, फिर सहाबा ने उसे महाजरे कैस कहना शुरू कर दिया। ये सारी बातें हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान मिंबर पर बरसरे मिंबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया जो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारोमदार नियतों पर है, आमाल के सवाब का दारोमदार नियतों पर है। अब आप देखें इंसान जो कोई काम करता है सबसे पहले इरादा करता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपको इस जलसे में आना था तो आपने इरादा किया ना कि मुझे जाना है, तब आप आए, बगैर इरादे के तो नहीं आ सकते। तो आपकी नियत थी, आपका इरादा था और नियत इरादा कल्बी का नाम है, तो आपने इरादा किया जलसे में आ। इसी तरह इंसान कोई भी काम करता है तो पहले नियत करता है, इरादा करता है। तो फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारोमदार नियत पर है। नियत अच्छी होगी तो काम भी नेक होगा और सवाब भी मिलेगा, और अगर नियत अच्छी नहीं तो नेक काम भी जो होगा वो भी खराब हो जाएगा। ये खास तौर पर याद रखिए, अगर नियत अच्छी नहीं होगी तो जो नेक काम होगा वो भी खराब हो जाएगा। अब इसकी मिसाल आप देखेंगे, नमाज अफजलुल इबादत, ठीक है ना, नमाज कुर्बे इलाही का जरिया है, नमाज रजाए इलाही का जरिया है, नमाज बंदों को रब से करीब करती है, नमाज बंदों को शैतान से दूर करती है, नमाज इंसान के जहन को पाकीज़ा करती है, नमाज इंसान के लिबास को पाक करती है, नमाज इंसान के बदन को पाक करती है, नमाज रुजू इल्लाह का जरिया है, नमाज तकर्रुब इल्लाह का जरिया है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और नमाज में जब वो सजदा करता है तो सजदे में जितना रब से करीब होता है किसी अमल में करीब नहीं, सजदे में जितना करीब। और आप देखें बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा देखो शैतान ने एक सजदा नहीं किया था, एक अल्लाह ने ये फरमाया ना उसके तूले आदम, आदम को सजदा कर, फरिश्ते सजदे में गिर गए। कुरान ने कहा फसजदू इल्ला इब्लीस, सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस। अच्छा फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि ये अपनी जगह बैठा, ये तो झुका नहीं, इसीलिए सजदा नहीं किया, फरिश्ते दोबारा सजदे में चले। एक सजदा अल्लाह के हुक्म से और दूसरा शुक्राने के तौर पर, मौला तेरा करम है हमने इसकी तरह नहीं किया कि हम अकड़ गए, हमने तेरी इताअत की, इसीलिए नमाज में दो सजदे हो गए, एक अल्लाह के हुक्म से है और एक शुक्राने के तौर पर। तो बुजुर्गों ने कहा उसने एक सजदा नहीं किया आज तक लानत हो रही है, तुम जरा गौर करो तुम कितने सजदे छोड़ देते। सोचने की बात है ना, अगर हम पूरा हिसाब लगाएं फजर में इतने सजदे हैं तो जोहर में इतने हैं, असर में इतने, मगरिब में इतने, ईशा में, पूरा हिसाब लगाएं कितने सजदे हम छोड़ देते। اور استغفر اللہ بہت سے تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتے, بہت سے تو عید بقرعید کی نماز, کتنے سجدے. جس نے ایک سجدہ نہیں کیا مردود بارگاہ ہو گیا, اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آج تک لعنت ہو رہی ہے, قیامت تک لعنت ہو. تو ذرا سا غور کرو, جس نے ایک نہیں کیا اس کا یہ حال ہوا, جو مسلسل چھوڑتا رہے اس کا کیا حشر ہو. ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے جی ٹائم نہیں ملا, آنکھ نہیں کھلی, پہنچ نہیں سکا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی, جس دن تم سے نماز قضا ہو جائے یہ مت کہنا کہ میں اٹھ نہیں سکا یا میں پہنچ نہیں سکا, بلکہ یہ سوچو مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ رب نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ رب نے مجھے اپنے گھر بلانا پسند نہیں کیا. ارے اسی کی تو توفیق ہے نا, اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن ارادہ ضروری ہے. ورنہ لوگ کہیں گے جی جو نماز نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے, جی اللہ نے توفیق ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جی توفیق وہی دیتا ہے, تو بھائی ارادہ بھی تو کرو, ادھر سے تم ارادہ کرو, ادھر سے توفیق ربانی ہوگی, ادھر سے رحمت ربانی ہوگی, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. تو اس لیے نماز افضل العبادت ہے, لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے تو یہی افضل العبادت اس کا کوئی ثواب نہیں ہو. کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں, تو نماز قبول ہوگی, ریاکاری آ گئی نا. دیکھیں ایک چیز ہے خلوص اللہ کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے, نماز پڑھیں صرف اللہ کی رضا کے, روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے, حج کیا اللہ کی رضا کے لیے. ایسا نہیں میں حج کروں لوگ مجھے حاجی کہیں, میں نماز پڑھوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں, میں صدقات و خیرات کروں لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے. نہیں, یاد رکھیے جس عمل میں ریاکاری آ جائے گی وہ عمل بیکار ہو جائے گا. جس عمل میں ریاکاری آ جائے گی اور جس عمل میں خلوص ہوگا صرف اللہ کی رضا, اسی وقت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے گا. اب یہی نماز, آپ نے نماز کا ارادہ کیا گھر سے چلے, ہر ہر قدم پر دس دس نیکی مل رہی, آپ نے نماز کا انتظار کیا, انتظار صلات, یہ صلات میں داخل ہے, جتنا وقت آپ مسجد میں بیٹھے رہے لکھا گیا کہ یہ تمام وقت اس نے نماز پڑھی, انتظار صلات صلات میں داخل ہے. اسی طرح آپ نے نماز ادا کیا, آپ کو ثواب ملا, آپ واپس چلے, ہر قدم پر پھر دس نیکیاں مل رہی ہیں. رب کی شان دیکھو, ابھی ہم اپنے گھر سے چلے ہیں اس کے گھر میں پہنچے نہیں ہیں, وہ پہلے ہی دس نیکیاں دے رہا, کتنا اس کا کرم. ہم کسی کو گھر بلاتے ہیں تو گھر بلا کے دیتے ہیں نا, اس کی شان یہ ہے ابھی اس کے گھر میں پہنچے نہیں ہیں, آپ نے صرف ارادہ کیا ہے اور چل رہے ہیں, ہر ہر قدم پر دس دس نیکیاں دے رہا, کتنا کرم. اور ہم کسی کو گھر بلا کر خالی لوٹاتے ہیں, بتائیے کوئی مہمان گھر پر آئے, کوئی چائے پانی ٹھنڈا گرم پوچھتے ہیں نا, پوچھتے یا نہیں, یا آپ لوگ نہیں پوچھتے, میرے خیال سے ایسے ہی واپس لوٹا دے, چلو چلے جاؤ, ایسے خرچہ ہوگا خامخواہ کچھ منگانا پڑے گا, ایسے تو نہیں ہے نا. غور کرو, ہم مخلوق ہو کر اپنے گھر میں کوئی آئے تو اسے خالی نہیں جانے دیتے, وہ خالق ہو کر کیسے خالی جانے دے, وہ خالق ہو کر کیسے خالی جانے دے. اور ہم تو گھر بلا کر دیتے ہیں, وہ گھر میں آنے سے پہلے دے رہا ہے, گھر میں دے رہا ہے, اور جب واپس جا رہے ہیں تب بھی ہر قدم پہ دس نیکیاں دے رہے ہیں. بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب آپ دیکھیں نماز افضل العبادت ہے, لیکن اگر ریاکاری شامل ہو جائے بیکار ہو. حج عبادت ہے, اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے لوگ مجھے حاجی کہیں اس لیے میں نے حج کیا, بیکار ہو. روزہ عبادت ہے, لیکن اگر ریاکاری شامل ہو گئی لوگ کہیں کہ میں بہت بڑا روزے دار ہوں, بیکار ہوں. جتنے نیک اعمال ہیں کسی میں بھی ریاکاری شامل ہو جائے گی, آپ سمجھ لے عمل بیکار ہو جائے گا, رد ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کا ذکر اذکار، آپ کے نوافل، آپ کی یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، دل میں صرف یہ نیت کر لے مولا تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے عمل قبول ہو جائے۔ اچھا صرف نیت کی بات ہے، صرف نیت۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری حکایت بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کی ایک مثنوی آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مثنوی لیکن ہے وہ فارسی میں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، پھر اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور ایسی سبق آموز حکایات ہیں کہ اگر انسان اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان، اپنے پیر کو اپنے شیخ کو بلایا، حضور آئیے اور مکان دیکھ لیجئے، ذرا آپ قدم رکھ دیجئے، دعا کر دیں، ہوتا ہے نا لوگوں کا طریقہ، کوئی کسی مولوی کو بلاتا ہے، کوئی اپنے پیر کو بلاتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو بلاتا ہے، بھئی آ جائیں گے، قدم رکھ دیں گے، دعا کر دیں گے، برکت ہو جائے گی۔ پیر صاحب آئے، انہوں نے مکان کو دیکھا، اندر سے باہر سے دیکھا، کمرے دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، ایک روشن دان ان کو نظر آیا، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا یہ روشن دان تم نے کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضور روشن دان کس لیے؟ بھائی روشنی کے لیے، اس لیے ہوتا ہے کہ روشنی آ جائے، ہوا آ جائے۔ انہوں نے کہا افسوس، صد افسوس، وہ بیچارہ سمجھا نہیں کہ روشن دان بنانے پہ حضرت کو افسوس ہو رہا ہے۔ کہا افسوس اس بات کا ہے کہ تو نے یہ سوچ کر روشن دان بنایا کہ ہوا آ جائے، روشنی آ جائے، اگر تو یہ سوچ کر بناتا کہ مسجد سے اذان کی آواز آ جائے تو یہ بنانا بھی عبادت ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بنانا بھی عبادت ہو جاتا، اور اگر تو یہ سوچتا کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا نہ آتی، کیا روشنی نہ آتی؟ وہ تو آتی خود بخود، لیکن نیت، نیت اگر نیک ہوتی تو یہ بنانا بھی ثواب ہو جاتا۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم نیک اعمال میں، بلکہ جیسے بھی اعمال ہیں، اب دیکھیں روشن دان بنانا کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آپ ثواب کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرماتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان میں نیت کر لیں نیک کام کی، اللہ رب العالمین اس میں بھی اجر ثواب عطا فرماتا۔ مثلا آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک کانٹا پڑا ہے، آپ نے یہ سوچ کر اٹھا کے رکھ دیا کہ کسی معصوم بچے کے نہ چبھ جائے، کسی انسان کے نہ چبھ جائے، کسی عورت کے، کسی بوڑھے کے نہ چبھ جائے، یہ ہٹانا بھی ثواب۔ ایک پتھر پڑا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، راستے سے دور کر دی کہ ایک نابینا شخص اس سے ٹکرا کر نہ گر جائے، ثواب۔ کتنا سا عمل ہے لیکن صرف نیت کی بات ہے، دل میں نیت کر لی ثواب ہو، نیت کر لی ثواب ہوا۔ ایک مسجد کے دروازے پر ایک آدمی نے کھونٹا لگا دیا، کھونٹا جس سے جانور باندھتے ہیں نا، اس نے لا کے کھونٹا لگایا، دوسرا آدمی آیا اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اچھا دونوں جو تھے، جو لگانے والا تھا اور جو اکھاڑنے والا تھا، دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے، تو لوگ گئے حضور دیکھیں یہ آپ کے مریدوں نے کیا کیا، یہ مرید آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ دیکھیے یہ فلاں مرید تھا، اسی نے مسجد کے دروازے پہ کھونٹا لگایا، پھر کہا یہ دوسرا مرید آیا اس نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب اس میں کون گناہ گار ہے؟ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مراقبہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھایا، کہا الحمدللہ کوئی گناہ گار نہیں، دونوں کو ثواب ملا، دونوں کو ثواب ملا۔ لوگ حیران، یہ کیا بات ہو، ایک نے آ کر لگا دیا اس کو بھی ثواب ملا، دوسرے نے اکھاڑ کر پھینک دیا اس کو بھی ثواب ملا۔ فرمایا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں، जिसने लगाया था उसको बुलाया, इधर आओ, ये बताओ ये खूंटा क्यों लगाया तुमने? कहा हुजूर मैं ये देखता हूं कि ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल लबे सड़क, यहां पर लोग आते हैं ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, यहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि नमाज हो रही है तो वो अपने जानवरों को यहां छोड़ के नमाज में लग जाता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि उनका ध्यान जानवरों की तरफ होता है, कोई लेके ना भाग जाए या जानवर खुद इधर उधर ना हो जाए। मैंने ये सोचकर खूंटा लगा दिया कि जो भी गुजरने वाला जो ऊंट पर, घोड़े पर, खच्चर पर यहां पे आएगा वो उसे बांध देगा, और जब बांध देगा तो इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेगा, रुजूए इलल्लाह होगा, कोई मसला नहीं। उन्होंने फरमाया देखो सुन लिया तुमने, इसको सवाब मिला या नहीं मिला? इसने इस नियत से वो खूंटा लगाया कि जो लोग आए जानवरों को बांध दें, इत्मीनान से नमाज पढ़े, खुशू और खुजू के साथ मत, सवाब मिल गया ना? उन्होंने कहा मिल। अब दूसरे को इसको बुलाओ, तुमने क्यों उखाड़ा? कहा हुजूर मैंने इसलिए उखाड़ा कि मैं ये देखता हूं कि यहां बूढ़े लोग भी आते हैं, ज़ईफ भी आते हैं, नाबीना भी आते हैं, जिनकी निगाह कमजोर है वो भी आते हैं। मैंने दिल में ये सोचा कि कोई नाबीना शख्स, कोई बूढ़ा शख्स, कोई ऐसा जिसकी निगाह बहुत कमजोर है वो इससे अटक कर गिर जाएगा तो नुकसान होगा, और पता नहीं क्या उसके साथ हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, इस वजह से मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। कहा बताओ उसको सवाब मिला नहीं मिला? हाँ मिला। अमल एक ही था, इसने लगाया उसने उखाड़ा, लेकिन दोनों की नीयत क्या थी? नेक थी, और सवाब की नीयत से किया था। एक ने लगाया कि लोगों की नमाज में खुशू खुशू पैदा हो, उनके जानवर आराम से बंधे रहें, दूसरे ने हटाया इसलिए कि कोई बूढ़ा आदमी, नाबीना आदमी ना गिर जाए। कहा दोनों को सवाब हो गया। यहां से पता चला कि नीयत असल चीज है, नीयत। इसीलिए सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बस उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا, और जिसने दुनिया के लिए हिजरत की, औ इमराति यतज़व्वजुहा, या औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, इला महाजरा इलैह, तो उसकी हिजरत उसी के लिए। यानी सरकार ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी नियत में अल्लाह उसके रसूल की रजा है तो वो अमल सवाब भी हो जाएगा, नेक भी हो जाएगा, और तकर्रुब इलल्लाह का जरिया भी। और अगर नियत में कोई और चीज है, अच्छा आप देखें हिजरत करने वाले तो सारे थे ना, सारे सहाबा हिजरत कर रहे, लेकिन वो क्यों कर रहे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का हुक्म, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत कर रहे। और कैसी हिजरत की? अपना घर छोड़ा, अपना सामान छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अहलो आयान को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, सिर्फ उनको लिया जो मुसलमान थे, जो काफिर थे छोड़ दिया। और जब मक्के की सरहद पर पहुंचे, काफिरों ने सामान भी छीन लिया, ये भी नहीं ले जा सकते, माल भी ले लिया, ये भी नहीं ले जा सकते, इसलिए कि मक्के में कमाया है, मक्के की दौलत मदीने नहीं जाने देंगे। कुर्बान हो जाओ उन सहाबा पर, अपना घर छोड़ा, अपना माल छोड़ा, अपनी दौलत छोड़ी, सिर्फ ईमान की दौलत सीने में लेकर मदीने तैयब हो, सिर्फ ईमान की दौलत। और अल्लाह ने क्या सिला दिया? कुरान कहता है रजी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी। अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमा दी, हम इबादत करें अल्लाह राजी हो जाए, हम रोजे रखें अल्लाह राजी हो जाए, हम नमाजें पढ़ें अल्लाह राजी हो जाए। उनकी किस्मत देखो, अल्लाह खुद अपनी रजा की सनद उन्हें अता फरमा रहा। इसीलिए शायर ने लिखा मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान कुरान वाले हैं, नबी का दीन इस लाम चमकाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में ये बात फरमाई, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और जो वाक्य हमने इब्तिदा में बयान किया ना, सरकार ने उसकी वजाहत फरमा दी कि अगर तुमने हिजरत की है इसलिए कि किसी औरत से निकाह करो तो वो उसी के लिए है, और अगर हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए तो फिर अल्लाह उसके रसूल के लिए। बताना ये मकसूद था कि तुम्हारी नियत में जो कुछ होगा उसी पर सवाब या गुनाह या जो भी चीज होगी उसी पर मरतब। अगर नेक इरादा है तो सवाब, और अगर नहीं है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। अब इसी तरह आप देखें, एक अमल में आप कई नियतें कर सकते हैं और हर नियत का सवाब। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, ठीक है ना, आपका इरादा क्या है, मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा और वापस आ जाऊंगा, यही इरादा है ना। लेकिन आप साथ साथ नियत कर लें कि जब मैं मस्जिद में दाखिल होऊंगा तो दाखिल होने की दुआ भी पढ़ूंगा, जब बाहर निकलूंगा तो बाहर निकलने की भी दुआ पढ़ूंगा। एक फिर आप ये नियत कर लें कि जब मस्जिद में जाऊंगा तो इतिकाफ की नियत भी करूंगा। दो फिर नियत कर लें कि मस्जिद में जाऊंगा तो मसनून दुआएं भी पढ़ूंगा। तीन फिर नियत ये कर ले कि मस्जिद में कोई नेक साले आदमी मिला तो मैं उसकी जियारत करूंगा, मैं उससे मुसाफा करूंगा। चार फिर आप नियत कर लें कि मैं मस्जिद में कुछ देर बैठकर जिक्र अज़कार करूंगा। पांच फिर आप इरादा कर लें कि मस्जिद में अगर वक्त मिला तो मैं तिलावत कुरान भी करूंगा। अमल एक है, नियतें पांच है, पांचों का सवाब अलहदा मिलेगा। बात समझ में आई, पांचों का सवाब अलहदा मिलेगा, सिर्फ नियत, नियत की बात, नियत कर ले। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे, एक नौजवान भागता हुआ औरत, जैसे होते ना अक्सर नमाज में टाइम कम होता है तो हम लोग तेजी से दौड़ते हैं कि हम जाके जमात में शामिल हो जाएं। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि हजरत जुनैद बगदादी बाहर निकल, उसने पूछा क्या नमाज हो गई, जमात हो गई? इन्होंने कहा हो गई। उसके दिल से निकला आह, क्या निकला आह, यानी अफसोस आज मेरी जमात निकल गई। गौर करें, नमाज नहीं निकली थी, कजा नहीं हुई थी, वक्त था, मस्जिद में पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त पहुंचे जमात हो चुकी, नमाज का टाइम था। लेकिन उसको इस बात पर भी अफसोस हुआ और उसके दिल से एक आह निकली कि आज मेरी जमात निकल गई। जरा सा गौर कर, हम कितनी जमातें छोड़ देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। अच्छा, ये वाकया हुआ, हजरत जुनैद बगदादी ने देखा कि नौजवान है, कोई ऐसा नहीं क्या डेढ़ उम्र का आदमी, कोई बूढ़ा आदमी, लेकिन इस नौजवानी में इसकी इबादत का शौक, नमाज का जौक कितना है कि अभी इसकी सिर्फ जमात निकली है और इसके दिल से आह निकल गई, आह मेरी जमात निकल गई, हालांकि नमाज का वक्त था। आपके दिल पे बड़ा असर हुआ, आपने फरमाया सुनो नौजवान, एक सौदा करोगे? उसने कहा कौन सा सौदा? का सौदा ये है, आज सुबह मैं घर से निकला इस इरादे से कि मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, मैं मस्जिद पहुंच गया, नमाज से पहले मैंने वुजू किया, फिर मैंने नमाज का इंतजार किया, इंतजार करने के बाद जब जमात हुई तो मैंने बाजमात नमाज अदा की, फिर मैं बाहर निकला तो तुमसे मुलाकात हुई, आज का ये सारा अमल मैं तुझे देता हूं, तू अपनी आह जो है ये मुझे दे दे। गौर कीजिए, अपनी आह जो है जो तेरे दिल से निकली है ये मुझे दे दे, और ये मेरा सारा अमल सुबह का कि घर से निकलना, नमाज का इंतजार करना, फिर नमाज पढ़ना, फिर जाना, इसका सबका सवाब मैं तुझे दे रहा हूं, ये आह मुझे दे दे। तो उसने कहा सौदा हो सकता है? कहा हो सकता है, अगर तू राजी हो जाए, भाई मेरे ये अमल जो है तू ले ले और अपनी आह मुझे दे दे। उसने कहा चलिए ठीक है, मैंने अपनी आह आपको दे दी, आपका अमल मैंने ले ली। बात आई गई होगी, अंदर गया उसने, नमाज पढ़ी, घर चला गया। जब रात को सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि तूने बड़ा सस्ता सौदा किया, बड़ा सस्ता सौदा किया। उसने कहा क्यों? अरे तूने अपनी आह जुनैद बगदादी को दे दी, उनका अमल तूने ले लिया, तुझे नहीं पता कि जब तेरे दिल से इस अफसोस में कि तेरी जमात निकली है, आह तेरे दिल से निकली थी, अल्लाह ने 70 नमाजों का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया। या रसूल अल्लाह, इस आंख के बदले 70 नमाजों का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया और तूने जुनैद बगदादी को दे दिया, उनका अमल ले लिया। अब ये बड़ा परेशान, करवटे बदलता रहा, नींद गायब हो गई, सुबह हुई, जल्दी से तैयार हुआ, वुजू किया, दौड़ा मस्जिद की तरफ, जाकर इसने नमाज अदा की, देखा कि हजरत भी मौजूद, हजरत जुनैद बगदादी। नमाज पढ़ के जब निकलने लगे, इसने हाथ पकड़ लिया, हुजूर एक दरखास्त। उन्होंने कहा क्या? कहना सौदा कैंसिल। उन्होंने कहा सौदा कैंसिल, ये क्या बात है? कहा नहीं नहीं जी, जो कुछ कल हुआ था ना, हमने सौदा किया था, मैंने अपनी आह आपको दे दी, आपका अमल मैंने ले लिया, सौदा कैंसिल। उन्होंने कहा सौदा कैंसिल नहीं होता, क्यों कैंसिल कर रहा? कहा इस तरह मैंने ख्वाब देखा है, इस वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूं। कहा सौदा अब कैंसिल नहीं होता, ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा, ख्वाब मैंने भी देखा है, अब सौदा कैंसिल नहीं होता, जो हो गया वो हो गया। बात समझ में आई? इससे क्या सबक मिला? सबक ये मिला, अव्वल चीज हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, दूसरी चीज अगर किसी दिन हमारी नमाज निकल जाए या हमारी जमात निकल जाए तो हमें अफसोस करना चाहिए, अफसोस आज हमने नमाज नहीं पढ़ी। कितनी नमाजें हम छोड़ देते, फजर निकल गई तो जोहर में पढ़ लें, जोहर निकल गई तो असर, असर निकल गई तो मगरिब, कभी एहसास हुआ? खुदा की कसम अगर एहसास हो और हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाए कि आज हमने फजर नहीं पढ़ी या जोहर नहीं पढ़ी या जो भी नमाज निकले, आप समझ लें कि अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल हैं, और एक के बदले वो कितने नमाजों का सवाब नामे आमाल में लिख देगा, यह अल्लाह का करम है। लेकिन हमारी कैफियत यह कि दिल पर ऐसी स्याही है, अफसोस ये होता है कि बाद लोग जुमे की नमाज भी छोड़ देते। जिसने एक जुमा छोड़ा उसके दिल पर एक तिल के बराबर स्याही आ जाए। अब आप देखिए, मुसलसल छोड़ता रहे तो क्या होगा? दूसरा तिल लग गया, फिर तीसरा लग गया, चौथा होते होते पूरा दिल स्याह हो, और जब दिल सियाह होता है तो फिर इंसान का एहसास खत्म हो जाता है। नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, कोई दिल पे असर नहीं हो रहा, लोग सामने से उठकर जा रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं, वो पक्का शैतान बन जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ना पंच वक्ता नमाज कोई आपकी कदा हो और ना जुमा और ना ईदैन की कदा हो, बल्कि उसके लिए तैयारी करें। इबादात का हम जितना एहतमाम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। हदीस शरीफ में ये आया, हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया एक आदमी है, उसने जुमे के दिन तैयारी की, उसने गुस्ल किया, अपने जिस्म को पाक किया, उसने साफ सुथरा लिबास पहना, फिर वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया, उसने खुतबा सुना, फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर उसने सुन्नतें पढ़ी, फिर वो अपने घर की तरफ आया, फिर एक हफ्ता गुजर गया तो दूसरा जुमा आया, फिर उसने जुमे की तैयारी की, गुस्ल किया, कपड़े बदले, फिर नमाज पढ़ने के लिए गया। फरमाया एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान जितने भी गुनाह थे सब माफ कर दिए। गौर करो कितना करम है अल्लाह तबारक वो कहते हैं हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं। راہ دکھلائیں کسے رہ رب مندر ہی نہیں, ہم صرف اہتمام کر رہے, ہمارا رب ہمیں دینے کے لیے تیار. ہماری کیفیت تو یہ کہ کہیں جا رہے ہیں, اچھا چلو جمعے کے ہوں وقت آ گئے, چلو نماز پڑھتے ہوئے نکل جائیں, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, کپڑے کیا کیسے بھی ہیں, چلو بھائی نماز پڑھ کے نکل جاؤ. جیسے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ کوئی بوجھ ہے کہ چلو بھائی پڑھ کے اتار, ایسا نہیں. اہتمام کیجئے, عبادات کا اہتمام کیجئے, نمازوں کا اہتمام کیجئے, اور جو نماز پڑھتا ہے خود بخود اس کا جسم بھی پاک رہے گا, اس کا لباس بھی پاک رہے گا. آپ دیکھیں حقیقت, بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آپ بھی نماز پڑھ, نہیں جی حضور وہ کپڑے ناپاک ہیں, کپڑے ناپاک. کیوں ناپاک ہیں بھائی؟ آپ پاک رکھیں. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں چھینٹے اڑ رہی ہیں, آپ کو اندیشہ ہے کہ کپڑے خراب ہوں گے, آپ نماز کے لیے الگ لباس رکھیں. جیسے ہی نماز کا وقت ہو لباس تبدیل کریں, فوراً نماز پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے, قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کیا جا سکتا, مولا اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ لباس پاک نہیں تھا, جسم پاک نہیں تھا, یہ عذر نہیں پیش کیا جا سکتا. کوئی بیماری کا عذر پیش کرتا ہے, کوئی مسافری کا عذر پیش کرتا ہے, کوئی عذر پیش کرتا ہے. اگر نماز پڑھنے والا ہوگا ہر صورت میں نماز پڑھے, اور اس سے پہلے اپنے جسم کو بھی پاک رکھے گا, اپنے لباس کو بھی پاک رکھے گا. اور آپ دیکھیں ہمارے لیے آسانی کتنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے نماز کی جگہ مقرر تھی, اسی جگہ نماز ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. ان کی جو بھی عبادت تھی اس کی جگہ مقرر. اب بتاؤ اگر آج کے دور میں نماز کی جگہ صرف مسجد ہوتی تو کتنا مسئلہ ہو. اگر مسجد دور ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, گھر میں نماز نہیں ہوگی, بازار میں نہیں ہوگی, صرف مسجد میں ہو, پریشانی ہوتی نا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہیں مختص تھی, مقرر تھی, نماز کی جگہیں مقرر تھی. میرے رب نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا, پوری زمین کو مسجد بنا دیا. محبوب جہاں چاہے پڑھو, آپ گھر میں نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی, مسجد میں ہو جائے گی, سڑک پر ہو جائے گی, گھاس پر ہو جائے گی, پارک میں ہو جائے گی, ہال میں ہو جائے گی, جہاں بھی پڑھو نماز ہو جائے گی. رب قبول کرنے کے لیے تیار ہے, تم پڑھنے والے تو بنو, نماز پڑھنے والے تو بنو, پھر دیکھو رب کیسے قبول کرتا ہے. تو اب بتائیے انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اب سوچ لو اللہ کے گھر میں ہی تم وعدہ کر رہے ہو, اپنے گھر میں نہیں کر رہے. اچھا اب دیکھیے بات کہاں سے چلی کہ نیت, نیت جیسی ہوگی ویسا پھل ہو. فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا رات کو جاگنا, بہت سارے لوگ جاگتے ہیں, کیا سب کا جاگنا ایک طرح ہے؟ ایک چور ہے وہ چوری کی نیت سے جاگ رہا ہے کہ لوگ سو جائیں تو پھر میں جا کے چوری کر. رات میں چوری کرتے ہیں نا, دن میں نہیں, روشنی ہے, لوگ جاگ رہے ہوں گے, جب لوگ سو جائیں تب ہم چوری کریں. ایک کھیل تماشے کے لیے جاگ رہا ہے, ایک گناہ میں رات گزار رہا ہے, کوئی چوری میں رات گزار رہا ہے, کوئی شراب پوری میں رات گزار رہا ہے, مختلف چیزیں. لیکن قرآن نے کہا یبیتون لربہم, اللہ کے بندے وہ ہیں جو رب کے لیے راتیں گزارتے, اس کی رضا کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تقرب الی اللہ ہونے کے لیے. وہ رحمان کے بندے ہیں, وہ رب کے بندے ہیں. اسی لیے نیرب پہ ہی ان کی قید لگا دی, ورنہ اگر یہ کہا جاتا جو بھی رات کو جاگتے ہیں وہ سب اللہ کے بندے, وہ سب اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں, تو مختلف صورتوں میں رات گزارا. ایک چوکی دار ہے, وہ چوکی داری کرتے ہوئے رات گزارتا ہے, کچھ لوگ ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے الٹی سیدھی باتیں فضول باتیں کرتے ہوئے رات گزار رہے. آپ دیکھیں نا ہم لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام کی تین قسمیں, تین کتنی قسمیں؟ تین, ایک مفید, ایک غیر مفید, اور ایک وہ جو نہ مفید نہ غیر. एक वो है ना कलाम जो फायदेमंद हो, जिससे आपको फायदा हो, एक वो है जिससे आपको नुकसान हो, एक वो है ना फायदा ना नुकसान। अब उसकी मिसाल मैं दे दूं, आप जैसे इस महफिल में आप बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फायदा हो, आने का भी सवाब मिलेगा और जो कुछ सुना उस पर अमल करेंगे तब भी सवाब मिलेगा, ये कलाम फायदेमंद। इसी तरह आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जो गलत किस्म के लोग हैं, गलत बातें आपके जहन में जा रही हैं, गलत चीजें आपके जहन के अंदर पैदा हो रही हैं, नुकसान। और एक कलाम वो है ना फायदा ना नुकसान। फुटपाथ पर बैठकर वाशिंगटन में क्या हो रहा है आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अमरीका में ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, भाई तुम्हें क्या मसला है, भाई तुम अपना काम करो, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है तुम ये देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, बल्कि इसको छोड़कर अपने घर में देखो, पहले घर में क्या हो, अपने आप को दुरुस्त कर लो, बाकी सारे दुरुस्त हो जाएंगे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि तुम सारे माशरे को दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने आप को दुरुस्त कर लो, अपने आप को ईमानदार बना लो और समझ लो कि माशरे से एक बेईमान कम हो गया। कितनी बड़ी बात, अपने आप को नेक कर लो, समझ लो माशरे से एक गुनाहगार एक बेईमान कम हो गया। अगर हर आदमी इस तरह सोचे पूरा माशरा सुधर जाए, पूरा माशरा सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं, हम दूसरों को देख रहे हैं और फजूल बातें, एक दूसरे की कीमत करते हैं, चुगली खाते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। और नुकसान क्या है, नामे आमाल में गुनाहों का इजाफा हो रहा, गीबत की गुनाह लिखा गया, झूठ बोला तो लिखा गया, किसी की दिल आजारी की वो लिखा गया, कोई गुनाह किया वो लिखा गया, नामे आमाल सिया हो रहे हैं और हमें परवाह नहीं, हम वक्त को जाया कर रहे हैं। और याद रखो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, इसीलिए कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, इसीलिए नुकसान में अपना वक्त जाया कर रहा है, खेल तमाशे में, लैब लाभ में, फजूल बातों में, गुनाहों में, रियाकारी में, दिखावे में अपना वक्त जाया कर रहा, इसलिए एक एक वक्त कीमती है। रात को देर तक जागते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बैठे हुए, कोई बाकड़ा होटल में बैठा हुआ है तो कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 2 बजे घर जाकर लेटे तो क्या खाक फजर में उठोगे, नहीं उठ सकते ना, तो फिर जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, मसला हो जाए। तो इसलिए हम अपने टाइमिंग को मैनेज करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक चोर जो है वो रात गुजारता है किस लिए, चोरी की नियत से। अब बताओ इस पर उसको सवाब है या गुनाह, गुनाह है ना, रात वो भी गुजार रहा है और रात वो भी गुजार रहा है जो इबादत में अल्लाह की रजा के, अल्लाह की रजा के, दोनों में फर्क हो गया, रात इसने भी गुजारी, रात उसने भी गुजारी, इसने अल्लाह की रजा के लिए, उसने चोरी की नियत। सुल्तान महमूद गजनवी रात में भेद बदल कर घूमते थे रियाया की खबरगीरी के लिए, तो एक दिन ऐसे चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि 3 चोर एक जगह बैठे हैं, चोर चोर इंतजार करते हैं, रात जरा बीत जाए, आधी रात हो जाए, लोग सो जाए, गफलत में आ जाए, फिर हम चोरी करते, तो अब क्योंकि इन्होंने भेद बदला हुआ था, अच्छा कोई जानता इसलिए नहीं था कि मीडिया का दौर ही नहीं था, ना अखबार थे, ना टेलीविजन, ना टेलीफोन, ना मोबाइल, ना फैक्स, ना इंटरनेट, ना गूगल, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं, वरना हम में से कोई भी अपने हुक्मरानों से मिला है कभी, कोई मिला नहीं मिला, लेकिन जानते हैं ना, तस्वीरें आ गई, तस्वीरें आ जाती ना अखबार में, देख लिया व्हाट्सएप पे, अच्छा ये सदर साहब है, ये वजीर आजम है, ये फला, ठीक है ना, इस वजह से कि मीडिया पर मौजूद है, उस जमाने में मीडिया नहीं था। अब हालांकि वो सुल्तान था, नाम तो था महमूद गजनवी, लेकिन देखा नहीं था किसी, तस्वीर ही नहीं थी। अब इसने क्या किया, वैसे भी इसका भेद बदला हुआ था बादशाह का, ये उनके पास पहुंचा और उनसे कुछ अलग से अलग हुई बातचीत हुई। उनका कौन है तुम? उन्होंने कहा हम तो चोर हैं, तुम कौन हो? कहा मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। उन्होंने कहा अच्छा, अरे ये भी अपना चोर है साथी, आ जाओ तुम हमारे साथ। कहा मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूं तुम्हारे ग्रुप में? हाँ शामिल हो सकते, लेकिन एक बात है, हम तीन जो चोर हैं हमारे अंदर तीन खुसूसियात हैं, हम तीनों में एक एक कमान है। क्या है? एक ने कहा देखो मेरे अंदर तो ये कमान है, मैं जानवरों की बोलियां समझता हूं, ये जानवर जो कुछ बोलते हैं ना मैं समझ लेता हूं। दूसरे ने कहा मेरे अंदर ये कमान है कि मैं रात में किसी को भी देख लूं अंधेरे में भी, तो दिन में अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं पहचान लूं, वरना आमतौर पर रात में कहां पता चलता है आदमी देखे कोई अंधेरे में तो पता नहीं कौन आदमी क्या है। उसने कहा नहीं मेरी ये क्वालिटी ये कमान है मेरे अंदर, मैं किसी को देख लूं ना रात में अंधेरे में भी, और उसको अंधेरा ही था, मैं दिन में अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं पहचान लूं। तीसरे ने कहा मेरे अंदर कमान ये है कि मैं ऊंची ऊंची इमारत पर कमंद डालता हूं। कमंद समझते ना, पहले ये होता था कि जैसे रस्सी है उसके आगे एक लोहे का टुकड़ा और वो ऐसे घुमा हुआ था, तो उसको हिलाकर ऊपर फेंकते थे तो वो इमारत के किसी भी हिस्से में अटक जाता, फिर उसी के जरिए वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाते। ये चोरों का तरीका था, जाहिर दरवाजे तो बंद थे तो उसको कहते कमंद। उसने कहा मैं कमन डालने में कमाल रखता हूं, मैं ऐसे फेंकता हूं कहीं ना कहीं वो अटकते, मेरा कुछ अंदाजा है कुछ वो है मेरा कमाल। महमूद गलतन भी नहीं, चलो ठीक है चले। कहा नहीं चले नहीं, आप भी तो कमाल बताइए, हम तीनों ने तो कमाल बता दिया। इसका ये कमाल है जानवरों की बोलियां समझता, इसका कमाल है रात में किसी को देख ले तो दिन में देख कर पहचान जाता है, इसका कमाल ये है कि ये ऊंची इमारत पर कमन डालता है। हम तीनों चोरों ने अपना कमाल बता दिया, अब आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप भी बताइए आपका क्या कमाल है। महमूद गजनबी ने कहा मेरा कमाल ये है कि अगर कभी तुम लोग पकड़े गए, भाई चोर है ना पकड़े जा सकते कभी, अगर पकड़े गए मैं अपनी दाढ़ी हिलाऊंगा तुम सब आजाद हो जाओगे। उन्होंने कहा वाह ये तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कमाल तो ये है, कभी हम पकड़े गए तो ये तो हजरत अपनी दाढ़ी हिला देंगे हम आजाद हो जाएंगे, आ जाओ भी आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। अब कितने हो गए? चार, पहले वो तीन थे ना, चौथे थे महमूद गजनबी। अब गए तो महमूद गजनबी ने कहा भाई कहां पे चोरी करनी है, कहां डाका डालना है? कहा बादशाह के महल में, और ये खुद ही बादशाह। इन्होंने कहा अच्छा बादशाह के महल, हाँ कैसे जाओ, ये कमन फेंकेंगे रस्सी के जरिए चढ़ जाएगी। उनका हाँ ठीक है चढ़। उसने जाकर फेंकी के ऊपर चढ़े, महमूद गजनबी भी चढ़ गए, सब चढ़। इन्होंने बता भी दिया, निशानदेही भी कर दी कि यहाँ खजाना होगा यहाँ होगा। इन्होंने लूटा खूब आराम से लूटा, और उसके बाद ये उतरे और अपने अपने घरों को रवाना हुए। इन्होंने कहा ऐसा करो कि अभी किसी जगह कयाम कर लो, फिर बाद में हिस्से कर लेंगे, चारों में तकसीम कर लेंगे। ठीक, एक जगह ये रुक गए। महमूद गजनबी वापिस आए, इन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ फला जगह पकड़ के ले आओ। सिपाहियों ने जाके छापा मारा, तीनों मौजूद थे उनको भी पकड़ लिया, और जो शाही खजाना लूटा था वो भी मिल गया। खैर अब वो हैरान कि हम पकड़े कैसे गए, क्या मसला है। लेकिन उनको ये ख्याल कि वो जो चौथा था वो कहां गया। अच्छा एक मामला रात में ये हुआ कि जब ये लोग गुजरने लगे ना तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, रास्ते में कुत्ता एक मिला उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, तो जो जानवरों की बोली समझता था उसने कहा कि भाई ये कुत्ता तो ये कह रहा है कि तुम तीनों में चारों में एक बादशाह है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, अब ये तो यही कह रहा है, मैं तो बोली जानता हूं, ये कुत्ता जो है ये भौंक जो रहा है ये कह रहा है तुम में से एक बादशाह है। तो महमूद गजनबी ने सोचा कि ये तो भांडा फूट जाएगा। महमूद गजनबी ने कहा छोड़ो क्या जानवरों की बातों पे ध्यान दे रहे, चलो हम अपना काम करें। ये कह के आगे बढ़ गए। खैर फिर गए बादशाह के महल में, यानी का अपना महल था, वो सब कुछ हुआ। फिर इन्होंने सिपाहियों को भेजा, वो पकड़े गए, का सुबह दरबार में पेश करना। अब वो तीनों चोर जो थे मुजरिम बनकर बादशाह महमूद गजनवी के सामने। तो जिसने ये कहा था ना कि मैं रात को किसी को देख लूं तो दिन में देखूं तो मैं पहचान जाऊंगा, उसने अपने साथी से कान में कहा कि भाई वो चौथा तो यही था। इनका क्या मतलब? अरे ये बादशाह था हमारे साथ भेद बदल के। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं भाई, मैं मेरी याददाश्त मेरे तो कमाल ही है, मैं रात में किसी को देख लूं और दिन में देख लूं तो पहचान जाऊंगा, यही था बादशाह। अच्छा अब क्या करें, तो हम पकड़ेंगे। खैर महमूद गजनवी ने दरबार लगाया, बैठे उनके सामने पेश हुए और फिर हुक्म क्या दिया कि चलो भाई इन्होंने चोरी की है, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो एक उनमें से आगे बढ़ा, वही जो पहचान जाता था ना, आगे बढ़के का हुजूर जान की अमान, कुछ अर्ज करूं? करो सरकार, आपने फरमाया था कि जब तुम लोग गिरफ्तार हो जाओगे तो मैं दाढ़ी हिलाऊंगा, तुम आजाद हो जाओगे। अब हम तीनों ने तो अपना कमाल दिखा दिया, अब आप भी अपना कमाल दिखा दिया। बादशाह मुस्कुराया, उसने ऐसे दाढ़ी हिलाई, कहा जाओ इन सबको आजाद कर दो। समझ में आई बात? सबको आजाद कर दो, वो सब आजाद हो गए। उन्होंने भी कमाल दिखाया, इन्होंने भी कमाल दिखाया। उलमा ने ये वाकया लिख के ये कहा है कि कयामत के दिन हम मुजरिमों की तरह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और हम सब अपने गुनाहों पर शर्मसार होंगे, नदामत शर्मिंदगी ये सारी चीजें होंगी। और जब हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, हुजूर फरमाएंगे आना लहा आज के दिन के लिए तो मैं हूँ, आ जाओ मेरे पास। और जब सरकार अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर देंगे, हुजूर के लब मुबारक हिलेंगे, रीशे मुबारक हिलेगी, सब आजाद हो जाएंगे, सब आजाद हो जाएंगे। तो अब रात कोई गुजारता है चोरी करने की नीयत से, कोई खेल तमाशे में, कोई लैबो लाभ में, कोई जिनाकारी में, कोई शराबखोरी में, और कोई अल्लाह की रजा के लिए। तो इन सब में फर्क है, जो अल्लाह की रजा के लिए गुजारता है अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा की सनद उन्हें अता फरमा देता है। तो नियत हर जगह नियत, नियत इरादा कल्बी का नाम है। और इस हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, इसके सवाब का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नियत नेक है, आपने सवाब की नियत की, आपको सवाब मिले। और अगर रियाकारी, दिखावा, मैं नमाज पढ़ूं लोग मुझे नमाजी समझे, मैं हज करूं लोग मुझे हाजी समझे, मैं फला काम करूं लोग समझे सदका तो खैरात कर रहा है, बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बहुत ज्यादा सखी है, जिस अमल में रियाकारी दाखिल हो जाए वो अमल बर्बाद हो जाता है। और जिस अमल में खुलूस हो उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। अब आइए एक ऐसी तरकीब आपको बताएं कि आप 24 घंटे नमाज में, 24 घंटे कोई नमाज पढ़ सकता है? जो नमाज के औकात हैं उसी में नहीं पढ़ते तो 24 घंटे क्या पढ़ो? इंतजारे सलात, ये सलात में दाखिल है। मसलन आप मस्जिद में पहुंचे, अभी नमाज में 15 मिनट है या आधा घंटा है, मस्जिद में जाकर बैठ गए, आपने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, इस्तगफार पढ़ रहे, कुछ भी, नमाज का इंतजार हो रहा कि अभी इमाम साहब आएंगे, अभी नमाज होगी। जितनी देर आपने इंतजार किया, नामे अमाल में लिखा गया इसने इतनी देर नमाज पढ़ी, कितना करम है अल्लाह। इंतजार सलात, सलात में दाखिल है। अब आइए कैसे 24 घंटे नमाज, जब आप रात को सोने लगें तो दिल में ये सोच कर सोएं कि मुझे सुबह उठना है और फजर पढ़नी है, फजर के इंतजार में सोएं। और जब उठ गए, फजर की नमाज पढ़ी, अब जोहर का इंतजार करें, कब जोहर हो तो फिर मैं जोहर पढ़ूं, और दिल में नियत कर लें कि मुझे जोहर पढ़नी है, मैं जोहर का इंतजार कर रहा हूं। जब जोहर हो गई तो जोहर पढ़ने फिर असर का इंतजार करें, असर पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार करें, मगरिब पढ़ने के बाद इशा का इंतजार करें, इशा पढ़कर सोए तो फिर फजर का इंतजार करें। इंतजार सनात, ये सनात में दाखिल है। 24 घंटे आपने इंतजार किया, 24 घंटे नमाज में शुमार हो, कितना कर्म है अल्लाह ताला का। और हमारी कैफियत क्या है, जुमे में भी उस वक्त पहुंचेंगे जब खुतबा शुरू होगा, पहले से नहीं जाएंगे। नहीं जी, ये मौलवी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो पुरानी किस्से कहानियां सुनाते हैं। जब देखा खुतबे की अजान हुई, हाँ भाई चलो अब खुतबा शुरू हो गया, अब जाके बैठ। हालांकि याद रखिए, हदीस शरीफ के मुताबिक हर जुमे को अल्लाह के फरिश्ते मसाजिद में नाजिल होते हैं और मसाजिद के दरवाजों पर रजिस्टर लेकर बैठते हैं। जो पहली साथ में आया उसका नाम लिखा गया, जो दूसरी साथ में आया उसका नाम लिखा गया, जो तीसरी साथ में आया उसका नाम लिखा गया। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उसी साथों के हिसाब से सवाब उनके नामाए अमान में लिखा जा रहा है। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खतीब मिंबर पर बैठ गया फरिश्तों ने अपने दफ्तर लपेट दिए। जब खतीब मिंबर पर बैठ गया फरिश्तों ने अपने दफ्तर लपेट दिए, यानी खुतबे के बाद जो कोई आया या खुतबा शुरू होने के वक्त आया उसका नाम जुमा पढ़ने वालों में नहीं लिखा गया। गौर कीजिए, आप ये नहीं कहेंगे भाई जुमे की नमाज नहीं हुई, नहीं नमाज हो गई, नमाज तो हो जाएगी, सवाब मिल गया, लेकिन जुमा पढ़ने वालों में नाम नहीं लिखा गया। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम पहले से जाएं, जुमे का एहतमाम करें, गुस्ल करें, अपने जिस्म को पाक करें, अपने लिबास को साफ करें और उसके बाद एहतमाम के साथ नमाज के लिए जाएं, फिर वहां पर इंतजार करें। जितनी देर आप इंतजार करेंगे ये सारा वक्फा जो है इबादत में शुमार, नमाज में शुमार हो, इंतजार सलात की सलात में दाखिल है। तो ये तमाम चीजें अपने जहन में रखें कि अगर हम हर चीज में सवाब की नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू उस नियत की वजह से हमें सवाब का अजर सवाब अता फरमाएगा, अजर व सवाब उसके अंदर अता फरमाएगा, सिर्फ नियत का दखल। और जिस तरह के हमने बताया कि एक अमल में कई नियतें भी आप कर लें और जितनी नियतें करेंगे उन तमाम नियतों का सवाब आपको मिलेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू का बहुत बड़ा करम है। लेकिन अफसोस ये है कि हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। एक आदमी ने यह अहद किया कि मैं छुप कर सदका दूंगा, वो निकला रात की तारीकी में अंधेरे में एक जगह गया, उसने देखा कि एक आदमी बैठा है दीवार के पास, उसने उसको सदका दे दिया। वापिस आ गया कि मैंने सोचा था कि मैं छुप कर सदका दूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, उसने दे दिया। सुबह को पता चला कि वो चोर था, जिसको सदका दिया था वो चोर था, और कुछ लोगों को भी पता चल गया, लोगों ने कहा भाई चोर को सदका दे दिया। बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने तो सोचा था कि मैं छुप कर दूंगा और मिला भी तो चोर। खैर, उसने कहा चलो कल देख। फिर वो पैसे लेकर निकला, मैं आज छुप कर सदका दूंगा, किसी को पता नहीं चले। एक औरत उसे नजर आई, उसने उसको पैसे दे दिए। सुबह को पता चला कि वो एक तवाइफ थी, लोगों ने कहा लो भाई तवाइफ को इसने सदका दे दिया। बड़ा परेशान हुआ, मौला दो दिन का मेरा सदका बेकार गया। तीसरे दिन फिर निकले पैसे लेकर, चलो भाई मैं किसी को सदका दूं लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। फिर निकले इधर उधर देखे, आप रात में तस्दीक तो कर नहीं सकते थे भाई ये चोर है कौन है क्या नहीं है। खैर, अल्लाह के भरोसे पर एक आदमी नजर आया, उसको दे दिया। अब वो लेके भी चला गया, पता चला कि वो तो पहले ही मानदार जिसको सदका दिया। लोगों ने कहा भाई ये तो मानदार को सदका दे दिया, सदका तो हुआ नहीं। अब ये आकर बैठा और इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला दिलों का हाल तो तू ही जानता है, अलीम व खबीर तो तू ही है, मैं तो कुछ जानता नहीं। मैंने तो अपने दिल में सिर्फ ये सोचा था कि मैं छुप कर सदका दूंगा। तो वो एक दिन चोर आ गया, एक दिन वो तवाइफ मिल गई, एक दिन ये मानदार मिल गया, मेरे तो तीनों दिन के सदके बेकार गए। इसी अफसोस में सो गया, خواب میں ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا، سن، تو نے جو چور کو صدقہ دیا لا علمی میں، اس کو پتا نہیں تھا نا کہ چور ہے، اس نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں چھپ کے دے رہا ہوں، تو امید ہے کہ اس دن اس نے چوری نہیں کی ہوگی، اس لیے کہ اس کو پیسہ مل گیا، ٹھیک ہے، اس دن کا تیرا صدقہ قبول ہوگا۔ دوسرے دن تو نے دیا توائف کو اور تجھے پتا نہیں تھا، تو نے صرف یہ سوچا کہ میں چھپ کر دوں، تو امید ہے کہ اس دن اس نے غلط کام نہیں کیا ہوگا، پیسہ اسے مل گیا۔ تیسرے دن تو نے ایک مالدار کو صدقہ دیا اور تجھے پتا نہیں تھا، تو نے صرف یہی سوچا کہ میں چھپ کر میں یہ کر دوں، تو امید ہے کہ اس کو کچھ عبرت ہوئی ہوگی، کوئی شرم آئے گی اور وہ آئندہ جو ہے ایسا کام نہیں کرے گا۔ اللہ نے تینوں دن کا صدقہ قبول کر لیا، تینوں دن کا صدقہ قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ اور نیتوں کو کیسے درست رکھیں؟ اب مثال کے طور پر، عام طور پہ آپ دیکھیں، کسی کی امانت کسی کے پاس ہو، کسی کا پیسہ کسی کے پاس ہو، دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے، آج کل تو یہ کیفیت ہے کہ دوسرے کے پیسے پہ کاروبار کرو، اپنا پیسہ چھپا کے رکھو، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، ادھر سے لے کے وہاں دے دو، وہاں سے لے کے وہاں دے دو، اپنا پیسہ سیف۔ حالانکہ دولت کسی کے پاس رکتی نہیں ہے، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے تو پرسوں اس کے پاس ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، سرکل ہے، چل رہا ہے، پیسہ کسی ایک جگہ نہیں رکتا۔ اور اگر آپ نے ایک کا پیسہ روکا، اب اس کو آگے دینا ہے تو اس کا رک گیا، اس کو اور آگے دینا ہے تو وہاں رک گیا، اور تیسرے کو دینا ہے وہ رک گیا، پتہ چلا پہلے نے روکا، آگے 10 آدمیوں کا پیسہ رک ہوا نا، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنے ذمے نہ رکھیں، ہمارے ذمے جس کا پیسہ ہے ہم فوراً دے دیں۔ دوسری بات، نیت رکھیں دینے کی، مجھے دینا ہے، لوگ کہتے جی ہے ہی نہیں اتنا، ہم کہاں سے دیں، ہم دے ہی نہیں سکتے، اتنا لاکھوں کا قرضہ ہے۔ بھائی آپ دینے کی نیت رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیتے رہیں، اللہ کرم فرمائے گا، پورا قرضہ اتر جائے گا۔ نیت بھی تو ہونی چاہیے، نہیں نیت نہیں ہے دینے کی، نہیں ہم تو دے ہی نہیں سکتے جی، یا تو وہ بیچارہ معاف کر دے یا پھر اپنے سر پہ لے کے۔ یاد رکھیے، کسی کا پیسہ اگر آپ نے جان بوجھ کر روکا، کسی کی دل آزاری آپ نے کی، کسی کو آپ نے گالی دی، کسی کو آپ نے عزت نفس کو مجروح کیا، کسی کی بے عزتی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، زکات و صدقات بھی ہو رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہو رہا، یعنی ہم نے جو پیسہ روکا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی سمجھو وہ معاف ہو گیا، ہم نے حج کر لیا تو یہ معاف ہو گیا، نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، ای المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، حضور مفلس وہ ہے، من لا درہم لہ ولا متا، جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ مفلس کے معنی نا فقیر، غریب۔ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ بھی یہی جواب دیں گے، کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں بھی یہی دوں گا، بھائی مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو صحابہ نے یہی جواب دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے، من لا درہم لہ ولا متاع۔ اب سنو اپنے آقا کا جواب، حضور نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو۔ فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو اس حال میں میدان قیامت میں لایا جائے گا، ومن ضرب ھذا، ومن اکل مال ھذا، ومن قتل ھذا، ومن شتم ھذا، اس کے نام امان میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی۔ فرمایا، یہ سارے اعمال اس کے نام اعمال میں ہوں گے، تو اس کے نیک اعمال उन लोगों में तकसीम कर दिए जाएंगे जिनके साथ इसने ऐसा किया हो। गौर कीजिए, जो नेक अमान है, नमाज रोजा हज ज़कात वो भी हैं, और साथ साथ अमानत में खयानत भी है, गाली भी है, किसी का कत्ल भी है, किसी के माल का खाना भी है, ये सारी चीजें। तो आका ने क्या फरमाया, वो नेक अमान उन लोगों में तकसीम कर दिए जाएंगे जिनके साथ इसने ऐसा किया हो, और ये खाली हाथ खड़ा हो। फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस। गौर करो कितनी बड़ी मुफलिसी है कि सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं। इसकी मिसाल ये समझो कि जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, 1,00,000 रुपए जमा कर लिया, 1 करोड़ कर लिया, 1 अरब जमा कर लिया। अब आप इत्मीनान से हैं, मेरे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, मेरे अकाउंट में बहुत पैसा है, आप इत्मीनान से हैं ना। लेकिन अगर खामोशी से वो निकल जाए और आपको पता चले कि 1 पैसा भी नहीं है, तब क्या हाल हो? जरा सा गौर करें, क्या हाल होगा? इतना हमने जमा किया और सब गायब। यही हाल कयामत के मुफलिस शख्स का हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सारे आमान उन लोगों में तकसीम कर दिए जाएंगे जिनके साथ उसने ऐसा किया होगा। अल्लाह ताला हम सबको कयामत की मुफलिसी से बचाए। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है, यहां कोशिश कीजिए, 1 पैसा भी अगर आप पर किसी का हो, कोशिश करें कि आप उसको अदा करें। अगर किसी की अमानत हो, उसके अहद तक पहुंचा दें। अगर किसी से वादा किया तो उस वादे को पूरा करें। अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उससे माफी मांगें। अगर किसी का हक गसब किया तो उसके हक उसको दे दें। लेकिन यहां पर कैफियत क्या है, हम नमाज पढ़ के समझते हैं हुकूक माफ हो गए। लोग अमानत में खयानत करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, मीरास में से अपने बहन भाइयों को महरूम कर देते हैं और बाप की मीरास पर साफ बनकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने जो नमाजें पढ़ी हैं इसका इजाला हो गया। ऐसा नहीं हो। मीरास और जकात ये आपके लिए फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है कि मीरास में कुरान और हदीस के मुताबिक जो हिस्सा दिया गया है, कुरान ने जो हिस्से मुकरर किए उसके मुताबिक आप दे दें। अमानत जिसकी भी है उसको दे दें, और ये सोच लें कि कयामत के दिन एक अमल का हिसाब दिया जाएगा। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक अदना सी नेकी, अदना सी बुराई, ये सारी चीजें कयामत में देखी जाएंगी। तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाज के साथ साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त करें। देखिए बंदों का ताल्लुक दो से है, आपका ताल्लुक दो से, एक मखलूक से और एक खालिक से। खालिक से भी अपना रابطہ दुरुस्त रखिए और मखलूक से भी अपना रابطہ दुरुस्त रखिए। खालिक से कैसे दुरुस्त रखें? जो जो कुछ उसने आप पर फर्ज किया है आप उसको अदा करें। नमाज फर्ज है उसे अदा करें, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, जकात फर्ज है, जो कुछ भी रब ने अहकाम आप पर फर्ज किए हैं उसे खुश किस्लूपी के साथ अदा कर लीजिए। रब के साथ आपका राबता मुस्तहकम। ठीक, अब आइए बंदों की तरफ। किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी का कर्ज है, किसी का कुछ है, जो कुछ है इसी दुनिया में उसको बराबर कर दे। ये ना सोचे कि हम कल कर देंगे। कल किसने देंगे? कल किसी ने नहीं देंगे। हमें एक दिन का नहीं पता, एक सेकंड का नहीं पता कि 1 सेकंड के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं। लोग कहते हैं जी मरेंगे तो देखा जाए, होता है ना, अगर किसी को मौत याद दिलाओ कि भाई मौत को तो याद कर लो, वहां क्या होगा? हाँ वहां जाएंगे तो देखा जाए। ये भी शैतानी ख्याल है, वहां जाएंगे तो देखा जाएगा, वहां जाने की तो दूसरी बात है। ये दुनिया दारुल अमल है, खालिक कायनात इसी दुनिया में दिखा देता है, मकाफात अमल यही हो जाता है। अगर तुमने यहां किसी के साथ ज्यादती की है यहीं पर उसका बदला मिल जाएगा। कुरान कहता है इन्ना बच्चा रब्बी का लशदी, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो जिसको पकड़ ले उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, और जिसे वो आजाद कर दे उसे कोई पकड़ नहीं सकता। किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही। आप देखें ना, बुजुर्गों की बातों में बड़ा असर है। इतनी प्यारी बात कि आप इसे याद रख लें तो समझ लें आपको फायदा ही फायदा। किसी ने कहा नसीहत कीजिए, एक बुजुर्ग ने कहा सुनो, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारी शिकायत अल्लाह से न करे। कितनी बड़ी बात, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारी शिकायत अल्लाह से न करे। क्या मतलब? अल्लाह से शिकायत कौन करेगा? वही करेगा जिसके साथ आप ज्यादती करेंगे। आप जिसके हुकूक को गसब करेंगे वो शिकायत करेगा, आप जिस पर जुल्म करेंगे वो शिकायत करेगा, आप जिसका मान खा जाएंगे वो शिकायत करेगा। यही बात है ना, सारी एक लंबी फेरिस्त हो जाएगी। तो इसलिए अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपनी चीजों में सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना, कोई ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी शिकायत अल्लाह की बारगाह में कर दे। अपने मामलात को ऐसे दुरुस्त रखो कि शिकायत का मौका ही ना, शिकायत का मौका ही नहीं। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम जो हैं वो मुसलमानों जैसे नहीं। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, लोगों की दिल आजारी हम करते हैं, आपस में एक दूसरे के हकूक को गसब करते हैं, लड़ाइयां कराते हैं, दुश्मनी करते हैं, और फिर कहते हैं मुसलमान। ये कैसे हो सकता? इसलिए होना ये चाहिए, ये दुनिया दारुल अमल है, यहीं पर अपने मामलात दुरुस्त कर लें। बंदों के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी दुरुस्त कर लें, और रब के साथ जो ताल्लुक है उसे भी मुस्तहकम कर लें। अमीर मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मैं चाहता हूं कि रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब चाहता हूं रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। कितनी प्यारी बात, मैं रब से बातें करूं मैं नमाज पढ़ता हूं। आप देख लें ना, हमने नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की उलूहियत बयान कर रहे हैं, उसकी शान बयान कर रहे हैं, उसकी अहदियत समदियत का इकरार कर रहे हैं, रुकू में गए तो उसकी अजमत, और सजदे में गए तो उसकी उलूहियत, पूरी नमाज में देख लें हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, मौला तू ही सबसे आला है, तू ही सबसे आला है, तू ही सबसे बरतर है। और जब कुरान उठाकर देखो, कहीं वो नमाज का हुक्म दे रहा है, कहीं रोजे का हुक्म दे रहा है, कहीं हज का हुक्म दे रहा है, कहीं जकात का हुक्म दे रहा है, कहीं अपने नबी की शान बयान कर रहा है, कहीं नबी की अजमत बयान कर रहा है, कहीं नबी का अदब सिखा रहा है, कहीं नबी की आन से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है, कहीं नबी की आन का अदब सिखा रहा है, रब बातें कर रहा है, अहकामात बता रहा है। तो जब मैं चाहता हूँ रब से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब चाहता हूं रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। और इन्हीं दोनों चीजों को हमने छोड़ दिया, इन्हीं को हमने छोड़ दिया, ना कुरान की तिलावत करते हैं और ना नमाजों की पाबंदी करते हैं। आज मुसलमान इसीलिए इस हद तक पहुंच गए कि वो अग़यार के गुलाम हो गए। जब तक गुलामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इख्तियार की थी, रसूल की गुलामी का पटा उनके गले में था, ऊंट पर सफर करते थे, खजूर खाते थे, सत्तू पीते थे, और पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, पूरी कायनात पर हुकूमत की मुसलमानों ने। और उनकी कैफियत क्या थी, जहां से गुजर जाते थे लोग उनके खौफ से डरते थे, मुसलमान आ रहा है, कौन है? रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। मुसलमानों की कैफियत ये थी, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरों दीवार का नक्शा बदल आई, जहां ठहरे दरों दीवार का नक्शा बदल आई, समंदर में भी जिंदगी दौड़ती राहें निकल
तन्हाई, पहाड़ों में भी दिल के फैज के चश्मे उबल आए, पहाड़ों में भी दिल के फैज के चश्मे उबल आए। वो थे मुसलमान जिनके दिल में खशियत इलाही राशिक हो चुकी थी, जिनका हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था। वो अगर डरते थे तो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, वो अगर गुलामी इख्तियार करते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की, इसीलिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। आज हम अग्यार के गुलाम हैं, उनके कहने पर चल रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा वो ही कर रहे हैं। कुरान को पसेपीट डाल दिया, शरीयत को पसेपीट डाल दिया, और फिर कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कुरान ने एक शर्त लगा दी, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मुमिनी, तुम ना खौफ करो ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे इन कुंतुम मुमिनी, अगर मोमिन रहे, अगर मोमिन रहे तो तुम ही गालिब रहोगे। आज हम मगलूब हैं इसीलिए कि मोमिन नहीं रहे। आप देख लें फलस्तीन में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, 32 से ज्यादा ममालिक जिनकी फौजें मौजूद हैं, जिनके पास असलहा मौजूद है, जिनके पास सामान हरम मौजूद है, जिनके पास इफ़रादी कुव्वत मौजूद है, जिनके पास दौलत मौजूद है, सारी चीजें हैं, अगर नहीं है तो गैरत ईमानी नहीं। सब बेगैरत बने हुए तमाशा देख रहे, इसराइल किस तरह उन मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा, बमबारी कर रहा, लेकिन सलाम है उन पर कि उस बमबारी में भी रमजान में वो लोग अपने घर के मलबे पर बैठकर रोजा इफ्तार कर रहे। और हमें जरा सा खौफ हो जाए तो मस्जिद में जाना छोड़ दे, जहां पर गोलियों की बौछार हो रही है मस्जिद अक्सा में वो फलस्तीनी नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ही उनकी मदद फरमाएगा। बस कहने का मकसद ये है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, तमाम हाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामए आमाल, नामए आमाल दुरुस्त कर लो, हाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। और इसका तरीका यही है कि किसी को कहने के बजाय हम सब अपनी अपनी इस्लाह करें, अपने घरों की इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें, अपने तौर पर करें। हर आदमी अपने तौर पर करेगा, पूरा माशरा सुधर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बोल बाला होगा, कुफर का मुंह काला होगा। अल्लाह तबारक बताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कल इल्म पर गुफ्तगू की थी और आज अमल पर गुफ्तगू हुई। अल्लाह तबारक बताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह नूरानियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू हो। जिस ज़ौक और शौक के साथ आप लोग तशरीफ लाए हैं इसी तरह तशरीफ लाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं और अहले बैत का सदका हम सबको अता फरमाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।